बस दफ़ा होता क्या है कि हम दूसरों के पीछे ही पड़ जाते हैं, ये साबित कर रहे होते हैं कि हमने आज इनको मनवा कर ही आना है, ये ना करें। और जो चीज़ बढ़ानी है वो खैर ख्वाही। तो रेशियो प्रोपोर्शनल क्या है, समझते हैं इस टर्म को, अखलाक वर्सेस खैर ख्वाही, सिंसेरिटी वर्सेस वेल विशिंग। आप जितने लोगों के लिए खैर ख्वाते जाएंगे आप खालिस होते जाएंगे। अगर देखें तो अखलास और खैर ख्वाही मिलते जुलते लफ्ज़ हैं। एक छोटी सी हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, और ये दो लफ्ज़ों की हदीस है अरबी में, अद्दीनु अन नसीहा, दीन खैर ख्वाही का नाम है। हमारे यहाँ तो लफ्ज़ खैर ख्वाह बड़ा बदनाम है ना, नासिख, नासिख कहते हैं, वो तो पोइट्री में भी बड़ा ही बदनाम है लफ्ज़, नासिख की बात तुझे बुरी लगे, लेकिन नासिख कौन होता है, नुसुख से, तौबतन नसूहा में जाके सूरह तहरीम में पढ़ेंगे, असलुन नासिख, असली शहद, यानी नासिख वो होता है जो असल में आपका मुखलिस होता है। उसको नंबर नहीं बनाने होते कि आप कितने लोगों तक दीन की बात पहुंचा रहे हैं, उसको ये तड़प लगी होती है कि आप इस गलत चीज़ से रुक जाएं। तो फिर दीनदार लफ्ज़ है क्या जो खैर ख्वाह हो, अल्लाह के लिए, रसूलों के लिए और आम लोगों के लिए। ये अगली हदीस के लफ्ज़ हैं जो इससे जुड़ते हैं। क्या पता चला, बहुत ही वैसे सख्त क्राइटेरियन है, अपने आप से पूछिए क्या मैं लोगों की खैर ख्वाह हूँ। यकीन करें सारा दिन रात लेन देन करने, साथ खाने वाले, दावतें करने कराने वाले लोग भी एक दूसरे से खैर ख्वाह नहीं होते, अंदर दिलों में कहीं ना कहीं खोट खपट चली रही होती है। दीन का काम साथ करने वाले नहीं एक दूसरे के साथ खैर ख्वाह होते, आप दूसरों को तो पीछे कर दें। तो लिहाजा जिस चीज़ को मैंने और आपने आज के इस पारे के बाद बढ़ाना है वो खैर ख्वाही है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। बिल्कुल इसी सोच को सामने रखे, जो दीनदार शख्स होता है ना, असल में इसके दिल में ये तड़प होती है। देखिए तड़प के बगैर दीन का काम नहीं हो सकता। क्या तड़प, कि जो चीज़ मुझे पता चल गई मैंने दूसरों को भी बतानी है। इसको हाईलाइट करें, हम कहते हैं ना ना ना, ऐसे ही दूसरों को क्यों बता दी, मेरे तो नंबर ही कम हो जाएंगे, सबको ही पता लग गया तो मैं तो प्रोमिनेंट ही नहीं रहूँगा। जैसे लोग अपनी रेसिपीज छुपाते हैं ना, इस तरह लोग कई दफ़ा दीन की गुत्थियाँ भी संभालते हैं, उसको भी छुपा छुपा के रखते हैं। जब कोई बंदा इस तरह से काम करेगा अल्लाह ताला इसकी बात दूसरों के दिल में ले जाएगा। नहीं मानते लोग, अल्लाह इसको अजर देगा। इस हबीब को लोगों ने नहीं माना, लेकिन मरने के बाद जन्नतियों में जाकर भी इन लोगों को याद कर रहा है। सुभान अल्लाह, लोग तो तारीफ़ें करने वालों को याद करते हैं, आपके फ़ैन और आपके एसीज़ और आपकी ट्यूब्स हैं, ये किसको याद कर रहे हैं, रिजेक्ट करने वालों को, जो अंगूठे का साइन देकर जाते हैं कि वी डिसलाइक यू, पीछे हो जाओ। आज हम लाइक्स पे मरते हैं, कितनों ने लाइक का बटन दबाया। अखलास क्या है कि आप लाइक और डिसलाइक से ऊपर उठकर ये देख लीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह को कितना पसंद है और अल्लाह की नज़रों में वो कैसा है। सवाल कीजिए अपने आप से, हम अपने दिलों का जायज़ा लें, हम कितना लोगों के लिए तड़पते हैं। तीन आयतें तो कुरान में मुझे भी याद हैं अल्लाह के नबी की तड़प की, फ़लअल्लका बाख़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीसी असफ़ा। ऐ नबी, आप तो अपने आप को हलाक ही कर लेंगे इस तड़प में, गम के मारे घुल घुल के, कि ईमान क्यों नहीं लाते, तो आपके मेरे अंदर कितनी तड़प है, कितनी खैर ख्वाही है लोगों के लिए। हम अपने आप से पूछें कि जिस चीज़ को हम अपने लिए पसंद करते हैं क्या दूसरों के लिए भी पसंद करते हैं। जो चीज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को लाती है क्या हम दूसरों के लिए भी लाते हैं। सबसे पहले इंसान अपनी ज़ात से काम शुरू करता है, अपने अंदर से गुनाहों की आमेजिश निकालता है, अपने आप को खालिस करता है, फिर अपने घर वाले, फिर ख़ानदान वाले, बाहर वाले, और फिर इंसानियत के लिए इतना मुखलिस हो जाता है कि इसको इसकी परवाह ही नहीं रहती कि मैंने कुछ दुनिया का अपने लिए फ़ायदा लिया या नहीं, बस वो ये कहता है कि लोग जहन्नुम से बच जाएँ। तो याद रखिए कि ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम अपने फ़ायदे से ज़्यादा दूसरों के फ़ायदे के लिए करना है। इसी चीज़ को अल्लाह ताला के नबी के लिए कुरान पाक में कई जगह बयान किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने आप को हलाक कर देंगे। दुआ करें कि अल्लाह हमें ये तड़प लगा दें। ये दुआ कीजिए कि मेरी वजह से इंसानियत अल्लाह की तरफ आ जाए। जिस बस्ती के लोगों ने हबीब की जान ली, बचे तो वो भी नहीं, ये भी अगली आयतों से पता चल रहा है। जहाँ दीन वालों पर जुल्म होने लगता है अल्लाह ताला उन बस्तियों को भी ख़त्म कर देता है, तबाह व बर्बाद कर देता है। फिर आयत 33 से पूरा रुकू ही जो आगे ना, ये कायनात की निशानी है। पहले हबीब की बात सुनाकर अल्लाह ताला बताते हैं कि खैर ख्वाही क्या होती है, कितना वो खैर ख्वाह था कि लोगों के लिए तड़पता ही रह गया। मरने के बाद भी कोशिश करता रहा कि लोगों ने चूके इसको मारा तो इन पर अजाब आ गया। इसी तरह खैर ख्वाही इस कायनात में दिखेगी। ज़रा सा गौर कीजिए, इस ट्रैवल में जो हमने ये 2 दिन में किया है, ज़मीनें बहुत देखी सब्ज़ा, और 80% चावल की फसल है, पानी में उगे हुए पौधे। इतना गौर व फिक्र, अल्लाह अकबर, अंदर देखने को दिल नहीं चाहता, बाहर इतनी खूबसूरती है। सबसे पहले देखिए ज़मीन कितनी खैर ख्वाह है। आप एक दाना इसको देते हैं, ऐसे ही डालता है ना किसान, और उस एक दाने से 700 दाने भी निकल आते हैं। पीछे पड़ चुके हैं, वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, गंदम के एक दाने से 100 दाने और 100 से फिर 700। तो ज़मीन खैर ख्वाह ना होती तो खा जाती ना किसान का बीज। एक एक सिट्टे में हमें वापस करती है, और इसी तरह कायनात सारी कर रही है। आप पूरे इकोसिस्टम को पढ़िए जाकर, पूरे ग्लोब को देखिए, आपको यही असूल मिलेगा कि सूरज खैर ख्वाह है कि नहीं, कितनी जल्दी सुबह आता है। आपका खैर ख्वाह है कि जल्दी से मैं जाऊँ ताकि ये अपने काम करें। आप कहेंगे रात कैसे खैर ख्वाह है, वो भी आपकी खैर ख्वाह है कि मैं जाऊँ ताकि ये सोएं। इन्होंने तो कमा कमा के अपने आप को पागल कर लेना, सोना ही नहीं है जब तक रात नहीं आएगी। इन आयत को पढ़ते वक्त ख़ास तौर पर अपनी तबीयत का मुशाहिदा करें, और जब बाहर जाएं तो शऊर के साथ इसको देखें कि ये कायनात क्या कुछ हमको मुहैया कर रही है। असल में ये पूरी सूरत हमें खिदमत करना सिखाती है, ये कि कौन खिदमत करना चाहता है इंसानियत की। मैं यहाँ रुक कर एक कमेंट बोलूं, सूरह यासीन के कितने ख़त्म करवाए जाते हैं ना घरों में, कभी किसी ने आज तक इसमें से ये खिदमत का नुक्ता नोट किया? हम तो इसको कितनी 6 या 7 मुबीनों से पढ़ते हैं लोग, 313 दफ़ा भी मैंने पढ़ते देखा कि ये पढ़ लो तो ये मसला हल हो जाएगा, ये पढ़ लो। तो खिदमत, खैर ख्वाही, इखलास किधर है? अभी देखिए, हम सूरत यासीन से ही आगे नहीं जा पा रहे। आज लोगों ने सोशल वर्कर्स के नाम पर बहुत सारी तंजीमें यानी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, कोई किसी महाज पर काम कर रहा है तो कोई किसी पर, अल्लाह ने जिसको जो तौफीक दी। लेकिन सबसे बेहतरीन सोशल वर्क क्या है? देखिए, कभी आप बैठे और एकदम फायर ब्रिगेड की गाड़ी की आवाज़ आए तो दिल में क्या आता है? कहीं आग लगी है, खौफ आता ना। तो क्या सबसे बेहतरीन सोशल वर्क ये नहीं है कि इंसानियत को जहन्नुम की आग से बचा लें? हू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, जहन्नुम का ईंधन बनने से बचा लें। अल्लाह अकबर, यहाँ के पेट तो भर ही जाएंगे, वहाँ के थोर ना खाने पड़े, कांटों वाला खाना, बदबूदार। यहाँ के घर टूटे हुए दोबारा बन जाएंगे, वहाँ के घर अगर जहन्नुम के बन गए तो क्या होगा? इस सोच के साथ इन आयात को पढ़िए। इखलास जब आता है ना तो बंदा देने वाला बन जाता है, जैसे कि ज़मीन की बात है। और एक जुमला नोट कर लें यहाँ, जिन लोगों पे भी आप अल्लाह का फजल होता देखें, हैं ना लोग फजल वाले, आप कहते हैं इस पे बड़ा फजल है, किसी भी एंगल में जिसके ऊपर फजल देखेंगे ना, इन डेप्थ जाकर देखिए, वो देने वाला होता है, अंदर से खरा होता है, जड़ें नहीं काटता, वो देना चाहता है। फिर आयत 36 में बयान किया जा रहा है कि हर चीज़ जोड़ों में है, यानी पेयर्स। सिर्फ एक चीज़ है कायनात की जो जोड़े के बगैर है, और वो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह एक है। इस आयत से पता चलता है कि इस दुनिया का भी जोड़ा है, और दुनिया का जोड़ा आखरत है, ज़िंदगी का जोड़ा मौत है। फिर आयत 37 से 40 में एक सबक है, क्या? पहली बात ये कि कायनात में जो सब कुछ हमें मिल रहा है वो हरकत है, जी, फ़फ़िरु इलल्लाह, तू साबित वो सैयारा, आबाद से अपने नस्बत तुझे हो नहीं सकती, यानी हरकत, मूवमेंट, डू समथिंग, बी प्रोडक्टिव। हर चीज़ घूम रही है, सूरज, चांद, सितारे। तो अल्लाह ताला यहाँ हमें बता रहे हैं कि सुस्ती छोड़ दो, हरकत में बरकत है। आज है सुस्त हमारे लोग, बूढ़े लोग ज़्यादा सुस्त हैं कि जवान? इस सफ़र में हम अपने ख़ानदान की सबसे ओल्ड पर्सनैलिटी हैं जो ज़िंदा लोगों में, उनसे मिले, 100 साल से ऊपर हैं, ना शुगर, ना ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी नहीं है उनको माशाल्लाह, और दिमाग इतना तेज़, हैरत होती है उनके। हमने सारी ज़िंदगी उनको कुरान, दुआएँ, तस्बीहात और ज़िक्र अज़कार में देखा है, अल्लाह ने उसकी बरकत से आज भी वो, यकीन करें, हमारे 50-60 के लोगों से भी अच्छी हैं। तो कुरान पढ़ने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता, अल्लाह उसके अंदर एक ताकत भर देता है। तो हरकत पैदा कीजिए, लीव द लेज़ीनेस, फिर दूसरी चीज़ जो इन सारी चीज़ों में है वो क्या है कि चांद घूम रहा है और ज़मीन घूम रही है जिनका महवर एक है, तो हमारी ज़िंदगियों का भी एक महवर होना चाहिए। महवर को क्या कहते हैं साइंस की ज़बान में? न्यूक्लियस। ये तवाफ़े काबा में क्या है, खाना काबा को बीच में रख के घूमते ना, तो इंसान की असल क्या है कि आपकी ज़िंदगी का भी एक फोकल पॉइंट हो। और ये है कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की ज़ात है, ला मकसूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, कुछ नहीं चाहिए मुझे अपने अल्लाह के सिवा, सब तुम रखो, मुझे मेरा अल्लाह का साथ दे दो। ये है इखलास। हम अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह वाली ज़िंदगियां बना लें। ये जो हज के मौके पे काबा का तवाफ़ करवाया जाता है, ये क्या सिखाता है? इखलास सिखाता है, एक रब के बनो। इसी तरह हर इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। हज को देखें तो तवाफ़ में सब घूम रहे होते हैं, सूरज को देखें वो एक जगह घूम रहा है, चांद को देखें वो घूम रहा है। ये किस बात का पैगाम है कि जो बंदा इसी तरह कामयाब होना चाहता है जैसे कायनात का ये निज़ाम चल रहा है, तो वो अल्लाह को अपना महवर बना ले। जब हमारी तरजीहात बदलती हैं ना, अल्लाह के माँ सिवा दूसरों के लिए नेकियाँ करने लगते हैं ना, तो अपने महवर से हट जाते हैं। बहुत सारी मिसालें कायनात में मौजूद हैं कि वही कारामद है जो अपने मरकज़ पर कायम है। देखिए, गाड़ी का पहिया फ्लैट कब होता है? उसका नीचे से जो फोकल पॉइंट है ना, वो टूटता है। साइकिल देखिए, उसके ऊपर एक वो चेन चढ़ी होती है, वो चेन ऊपर चढ़ा दें तो साइकिल चलेगी, चेन उतर गई तो साइकिल बेकार। ये चेन अखलास की चेन है, अल्लाह के साथ अपने आप को बांधे रखें। अखलास क्या है कि अपनी ज़िंदगियों का मकसद, अपनी नमाज़ों, अपने रोज़ों का, अपने हज, अपनी इबादत का मकसद अल्लाह की रज़ा कर लो। चंद सेकंड सोचें, क्या वाकई अल्लाह की रज़ा के लिए ये सारे काम करती हूँ? और कौन होता है जो सिर्फ़ अल्लाह के लिए काम करता है? जो खुद करता है। इसको हाईलाइट करें, खुद करना, सेल्फ मोटिवेटेड। कई लोग कहते हैं मोटिवेशन कैसे मिलता है? अक्सर मैं जहाँ भी बहुत दिन बाद जाऊँ या एक स्टेशन से दूसरे पे, तो साथियों से मैं यही पूछती हूँ, और पता भी चलता रहता है ग्रुप्स में ना, तो मैं उन्हें कहती कैसा चल रहा है सब। तो कभी कभी कुछ लोग ये जुमला बोलते हैं कि आप आती हैं तो हम बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं, आप चली जाएंगी तो हम पीछे ठंडे होते हैं। तो मेरा तो दिल ही बंद हो जाता है इस जुमले से। आप भी मुझे ये कह सकते हैं कि आप हैं तो हम बड़े शौक से आ रहे हैं, आप नहीं होंगे तो हम शौक से नहीं आएंगे। बिल्कुल बेकार है। सेल्फ मोटिवेटेड, आप अपने कदमों पे खड़े हों, दूसरे के सहारे पे दरख्त नहीं कायम रहते। और सेल्फ मोटिवेशन कब आता है? जब आपको एनर्जी मिलती है। ये फ़ोन मेरा मुस्तकिल चार्ज हो रहा है ना, क्यों? ये देखिए, ये इसका सेल्फ चार्जर है ना, ये लगा रहेगा ना पीछे से, तो मेरा फ़ोन 10 जगह भी यूज़ हो रहा है ना अगर, तो ये इसकी बैटरी नहीं ख़त्म होगी। कुरान से जुड़ते रहे, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बहार रख, कभी भी इंशाल्लाह आपकी बैटरियाँ डाउन नहीं होंगी। और मैं भी आज ये सब छोड़ दूँ ना, तो मेरे से ज़्यादा सुस्त है ही कोई नहीं, ये किसी को ना बताइएगा, मैं अपने बारे में सच जानती हूँ। ये कुरान, ये किताब, ये क्लासेस, ये सब कुछ ना हो तो शायद मैं भी आधा दिन सो के ही गुजारूँ। ये आपके अंदर ताकत भरता है कि अल्लाह इतनी प्यारी किताब और इनको पता ही नहीं, चलो आओ इनको बता कर आते हैं। तो अपने अंदर खुद पैदा करें ताकत। मुखलस शख्स क्योंकि वो एक रब का बन जाता है, तो ये कायनात हमें यही सिखाती है। और यहाँ ये भी पता चल रहा है कि जैसे चांद एक जैसा नहीं रहता, छोटा और बड़ा होता है ना। कितने चांद के हरकतें हैं? तकरीबन 14 डिफरेंट स्टेप्स हैं उसके। इसी तरह इंसान के अमाल भी छोटे और बड़े होते हैं। जी, घबराएं नहीं, बड़ी बड़ी नेकियों की फ़िक्र ना करें अभी, छोटी छोटी भी कर लें लेकिन जम के करें। नियतें बदलती हैं, काम होते हैं, करते रहेंगे। कुछ रातों के लिए चांद गायब भी हो जाता है लेकिन फिर निकल आता है। तो कभी कभी आप भी गायब हो सकते हैं किसी ऐसी चीज़ से जो आप बड़े शौक से कर रहे थे। बीमारी है, नमाज में वो मज़ा नहीं आ रहा, मेहमान आए तो बस जल्दी से बोझ टाला, कोई बात नहीं, टेक इट, करते रहिए, छोड़ना नहीं है। क्लास में आए पीछे दिल में ध्यान पड़ा हुआ, कोई बात नहीं, आके बैठ जाइए, आप देखेंगे कि व्यवस्था रहेंगे शजर से तो उम्मीदें रहेंगी। जो छोड़ देता है उसको कभी कुछ नहीं मिला, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। कुछ नहीं आता, जुड़े रहे, अच्छा नहीं कर रहे करते रहे, गलतियां करते हैं करते रहे। जिस दिन शैतान ने आपको ये कहा ना, मुझे तो काम ही नहीं करना, तो मैं नहीं कर सकती, उसी दिन आपका जवाल शुरू हो जाएगा। सूरज के एक ही हरकत है, चांद के कितने मरहले हैं। क्या बताया कि ये दुनिया तजादात का मजमुआ है। तजादात क्या होते हैं? डिफरेंसेस। हर तरह के हालात आएंगे, बस काम करते जाओ, काम करते जाओ। آیت 41 میں حضرت نوح کی کشتی کا اشارہ کیا گیا، کیسی کشتی تھی وہ؟ سورت نجم میں آئے گا کہ وہ عام سی کشتی تھی، ہاتھ سے بنی ہوئی تھی، لیکن کیا پتہ چلا، اس جملے کو ہائی لائٹ کر لیجئے، اخلاص والی کشتیاں بڑے بڑے طوفانوں میں سے بھی نکل آتی ہیں جی، اور تکبر والے ٹائٹینک بھی ڈوب جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کشتی کے ناطے سے یہ سبق دیتے ہیں کہ زندگیوں کی کشتیاں چاہے ہموار ہوں چاہے ڈول رہی ہوں، چلتے ہی جانا ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز تو آتے ہی رہیں گے، ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں کبھی، نیکی نہیں کر رہے ڈاؤن ہے، آج کیوں نہیں کر رہے، آج بہت اپ ہو گئے، خوشی آ گئی، شادی آ گئی، یہ اپس اینڈ ڈاؤنز کے اندر ہی، وہ کہتے ہیں نا اسی روز و شب میں کھو کے نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ زندگی میں دکھوں میں ڈپریشن میں نہیں جانا اور خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں جانا۔ پھر آیت 48 سے 54 میں انسانوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے روبرو ہونا یعنی پیش ہونا بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سور پھونکا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیسے چین سے بیٹھوں کہ اسرافیل سور کا لقمہ بنائے منہ میں رکھے میں، یعنی اللہ کا جب حکم ہوگا ان کو سور اٹھانا نہیں پڑے گا، ڈھونڈنا نہیں پڑے گا کہ کہاں ہے میری چیز۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کسی دن انسان قیامت کا جھٹکا کھائے گا اور چلا جائے گا، یہاں کچھ نہیں بچے گا، اور وہ دن ہوگا آپ کا اور میرا اللہ کے سامنے پیشی کا دن۔ اور ہر عمل کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچ لینا ہے کہ جو عمل کر رہے ہیں وہی اس کا بدلہ ملے گا، تو پھر کیسے عمل کرنا چاہیں گے ہم، اچھے یا برے؟ اور اگلی ہی آیت 55 میں جنتیوں کا صلہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجے گا، جو تم کر کے آ گئے، جو محنتیں تم نے کر لیں، اس کے بدلے میں اب میں تم سے راضی ہوں، اب تم عذابوں سے سلامت ہو، جہنم سے سلامت ہو، پل صراط سے سلامت ہو، تمہاری زندگی میں اب امن ہی امن ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ آپ دیکھیں جو اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے دنیا میں بھی انہیں سلامتی کے پیغام آتے ہیں، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس کو اس طرح محسوس نہ کر سکے، نیکی کرنے کے بعد جو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، اصل میں یہ وہ کیفیت ہے جو جنت میں جا کر ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک پکار بھی ہے جو آیت 59 میں ہے، وامتاز الیوم ایہا المجرمون، میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں ہو سکتا ہے ایک گھر میں رہنے والے لوگ اچھے بھی ہوں اور برے بھی ہوں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اچھے اور برے لوگوں کو الگ کر دے گا۔ سوچے ذرا کتنی شرمندگی ہوگی اس وقت جب ہمیں لائن سے نکال کر پیچھے کر دیا جائے گا کہ آپ کیوں ادھر آ گئی، آپ تو انوائٹیڈ ہی نہیں تھی، کتنی شرمندگی کا موقع ہوگا۔ پھر آیت 60 سے 64 تک بڑی دل سوز آیتیں ہیں، بڑی حسرت ہے ان آیتوں میں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ لیا تھا، سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے، پھر دنیا میں آ کر ایک انسان کھو جاتا ہے، سب وعدوں کو توڑ دیتا ہے، رونقوں میں لگ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی بات کرتے ہیں کہ تم آج اس دنیا میں رہ کر وہاں جانے کو یاد رکھو، وہاں اللہ تعالیٰ میدان محشر میں کھڑا کر کے پوچھے گا کیا میں نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ غلط کام نہ کرنا، مت اللہ کی نافرمانیاں کرنا، تم دنیا میں چند دن کے روزے رکھ لیتے تو آج آخرت کی افطاریاں تمہارے نصیب میں ہوتی۔ یہ بھی جم ہے، اس کو ہائی لائٹ کریں، مومن کی یہ زندگی رمضان جیسی پابندی ہے نا، نفس پہ قابو ہے نا، اور وہ دنیا عید کے دن جیسی۔ کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور جو کافر ہے وہ دنیا میں موجے کرے گا اور وہاں زنجیروں میں جکڑا ہوگا، کون سا انجام بہتر ہے؟ دیکھیے جو جتنا کرے گا اللہ اس کو اتنا ہی دے گا، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں نپے تلے قدم رکھتے ہیں، تو اس دنیا میں جو ہم سے مطلوب ہے وہ پرہیز ہے۔ لفظ پرہیز کو ہائی لائٹ کریں، صرف جملہ نہیں، پرہیز۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا اس چیز سے پرہیز کرنا ہے، تھوڑا سا پرہیز کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے اور اس کو ہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ مریض ہے جس کی صحت کی امید ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ایک دوسرا مریض ہے جس کی صحت کی اب کوئی امید نہیں، دوسرے لفظوں میں کہہ لے کہ جس کے زندہ رہنے کی امید نہیں ہے، تو اب ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جو مانگے دے دو۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ پچھلوں کو حسرت نہ آئے کہ مرنا تو ہے تو کھا کر مرے، अब इस मिसाल को हम अपनी इस बात पर लाते हैं कि जिस बंदे की आखिरत अल्लाह के हाँ अच्छी होती है, इसको अल्लाह ताला दुनिया में परहेज़ करवाते हैं, कुछ कमी देते हैं, कुछ नुकसान देते हैं, कुछ दुनिया में इसके पास हसरत होती है, कुछ ख्वाहिशें जो पूरी नहीं होती, लेकिन अल्लाह इसके बदले में इसको जन्नत देंगे। लेकिन जिन काफिरों और फासिदों की आखिरत अल्लाह के हाँ बुरी है कि वहाँ जाकर तो आग में जलना है, तो यहाँ खाओ और पियो, मौज करो, क्योंकि वहाँ नहीं मिलना। मिसाल समझ आ गई है? हुसन को देखिए, फिर माल उनका देखिए, उनकी सेहत देखें। आप गैर मुस्लिम को देखें तो ऐसे लगेगा कि अल्लाह इनसे बड़ा राज़ी है। लोग कहते हैं लो शक्लें भी उनकी ही अच्छी हैं, सड़कें अगर उनकी अच्छी हैं तो गोरे भी हैं। असल बात यह कि इंसान अपने आप को चेक करे कि मुझे कहाँ जाना है। अल्लाह ताला जहन्नम के किनारों पर खड़ा करके पूछ रहा है, हाजी जहन्नम, यही है वो जहन्नम जिसके बारे में तुमको डराया जा रहा था। तो ये थी सूरत यासीन। और आप देखिए कि हम सूरत यासीन को कैसे कैसे पढ़ते हैं। पूरी की पूरी सूरत ये ज़िंदा लोगों के लिए है। तमाम आयात मुहासबे की हैं। सोच लें, इस ज़िंदगी का सही इस्तेमाल करें। एक मौत की बेबसी होती है और एक बुढ़ापे की बेबसी, हम दोनों को नहीं टाल सकते। आप देखिए कई लोग कितने बूढ़े हो जाते हैं, कितने काबिले रहम होते हैं, नहीं मरते। अल्लाह ताला कहता है मर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से मर के दिखाओ, अगर हाथ में है इख्तियार तो मरो। तो आप जितने बेबस हैं, अल्लाह ताला कहते हैं अक़ल क्यों नहीं रखते। और उसके बाद फिर आयत 71 से अगली चंद आयात में ऐसी नेमतों का जिक्र है जिनका अल्लाह ताला ने इंसान को मालिक बनाया हुआ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन जानवरों से ही बंदगी सीख लो। देख रहे गौर व फिक्र कितना है इस सूरत में। अब जानवरों से सीखो, क्या देते हो तुम इन जानवरों को? चारा, घास फूस, और ये तुम्हें दूध देते हैं। रस्ते में जितना फसलें थी उसमें से मैं यही सोच रही थी इंसान इसके अंदर से दाने खाएंगे, गंदम है अगर, और छलियाँ, बाजरा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका वो सब्ज़े से वो कौन खाएगा। कितनी दफ़ा कल जाए चादा कि मता लकुम वली अनामिकुम, सूरह बस में आता है ना कि इसमें फ़ायदा है तुम्हारे लिए और तुम्हारे जानवरों के लिए। तो अब देखिए जानवर को आप घास देते हैं और वो दूध देता है, तो आप दूध से बनी हुई चीज़ें खा कर क्या दे रहे हैं? नफ़ा दीजिए, ये इखलास है। और तुम्हें अपनी पुश्तों पर बिठाते हैं और तुम मालिक से क्या कुछ खाते हो फिर भी उसके आगे नहीं झुकते। जिस तरह ये जानवर हमारे आगे झुकते हैं, क्या हम अपने रब के आगे झुकते हैं? हम अपना मुहासबा कर सकते हैं, जैसे मेरी चीज़ें मेरे आगे झुकी हुई हैं, क्या मैं भी अल्लाह के आगे झुकी हुई हूँ? तो सूरत यासीन बहुत लतीफ़ सूरत है, और इस सूरत का पैगाम यही है कि बंदगी के अंदर आ जाओ। वमा अली अल्लाह आबुदुल्लज़ी, मौत से पहले अपने आप को अल्लाह के हाथों में दे दो, वरना एक वो वक्त आने वाला है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते तुम्हारे वारंट लेकर आ जाएंगे। वारंट क्या होते हैं? कैद करने की इजाज़त। और तुम इनकार नहीं कर सकोगे। इस सूरत को जितनी मोहब्बत से पढ़ते हैं, इतना ही इसके तर्जमे और मफहूम के साथ पढ़ें। हमने जिन सूरतों को मुर्दों के लिए रखा है, उनमें जिंदों के लिए पैगाम है। लोग मरने वालों पर पढ़ते हैं, पैगाम जिंदा लोगों के लिए है। मौत के वक्त ये सूरत पढ़नी तभी फ़ायदा देगी जब ज़िंदगी में इसके मुताबिक अमल होगा। सूरत यासीन को इस पारे के मौजू के साथ अगर देखें तो दो जावियों में समेट लेते हैं। आखिरी जुमले सूरत के बारे में, सूरत यासीन को अखलास के साथ एक दफ़ा पढ़ना, तदब्बुर और गौर करते हुए, इसको शायद 70, 80 या 100 से जायद बार पढ़ने से भी ज़्यादा फ़ायदा देगा। कोशिश करें कि अपनी इबादत में खलूस पैदा करें। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा कि अगर कहीं सूरत पढ़ ही रहे हैं लोग, तो ये एक छोटा सा सेशन उनके साथ शेयर कर दें कि ये भी सुन लें कि ये सूरत कहती क्या है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।